आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय देखें। यूहन्ना ने अभी अभी चौथे अध्याय में यीशु के उन कामों का वर्णन लिखा जो उसने गलील के काना में किए, जिसमें राजा के उस कर्मचारी का वर्णन है जिसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार था। यीशु ने कुछ वचन बोले और 20 मील दूर परमेश्वर की आत्मा ने कार्य किया और उस कर्मचारी के पुत्र ने चंगाई पाई। इसलिए अब काना में उसकी सेवकाई के बाद और उस कर्मचारी के पुत्र की चंगाई के बाद, आगे लिखा है, यहूदियों का एक पर्व था और यीशु यरूशलेम को गया। वहां भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसहेदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियत समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे वह किसी भी बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाए जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। इस प्रकार यूहन्ना हमें यीशु की सेवकाई के एक और कार्य से परिचित कराता है। हमें याद है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार यीशु की सेवकाई के चुने हुए कार्यों का एक संकलन है। 19वें अध्याय में वह हमें बताता है कि ऐसे अनेक कार्य थे जिन्हें यीशु ने किए, परंतु इन बातों का वर्णन इसलिए किया गया कि आप इनके द्वारा विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है, जीवते परमेश्वर का इकलौता पुत्र, और उस पर विश्वास करने के द्वारा उसके नाम से जीवन पाए। अतः वह हमें यह बता रहा है कि वह यीशु के जीवन तथा उसकी सेवकाई में से कुछ चुनिंदा बातों के द्वारा हमें यह प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा है कि वही मसीह था, यानी जीवते परमेश्वर का पुत्र, कि उस पर विश्वास करने के द्वारा आप उसके नाम से जीवन को प्राप्त करें। जब यूहन्ना ने अपनी पुस्तक समाप्त की तो वह कहता है कि यीशु के विषय में असंख्य बातें थी जिनको लिखा जा सकता था। मैं सोचता हूं कि यदि उन तमाम बातों को लिखा जाता तो इतनी पुस्तकें लिखी जाती कि वे संसार के किसी पुस्तकालय में भी न समाती। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि आज ये बात प्रमाणित हो रही है जब हम उन पुस्तकों पर नजर डालते हैं जो धर्मशास्त्र, बाइबल और यीशु से संबंधित विषयों पर लिखी जा रही है और छप रही हैं, फिर भी जो लिखा जाना चाहिए उन विषयों का कहीं अंत नजर नहीं आ रहा है। अब ये उन्हीं बातों से संबंधित एक झांकी है। बेतहस्दा का कुंड, जिसके विषय में कहा जाता था कि वह भेड़ फाटक के अंदर था, आज के दिन में उस फाटक के भीतर है जो सिंह फाटक के नाम से जाना जाता है। यरूशलेम नगर की दीवारों के भीतर से भेड़ फाटक का नामो निशान मिट चुका है, परंतु खुदाई करने वालों ने सिंह फाटक या द्वार के भीतर खुदाई करके बेथस्दे के कुंड को खोज निकाला, जिसमें 5 ओसारे हैं और जहां यीशु ने इस लंगड़े मनुष्य को अपनी सेवकाई दी थी। उस कुंड के चारों ओर अनेक लोग थे, अंधे, लंगड़े और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोग, क्योंकि उस कुंड के विषय में यह प्रचलित हो गया था कि जब कभी उसका पानी हिलता तो उस समय जो व्यक्ति उसमें सबसे पहले उतरता था वह चंगाई पाता था, फिर वह चाहे किसी भी बीमारी से ग्रसित या पीड़ित क्यों न हो। इसलिए सारे लोग जो लंगड़े, अंधे, विकलांग और इसी प्रकार के थे, कुंड के चारों ओर पानी हिलने की आस में लेटे रहते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस दृश्य की कि वह कितना हृदय विदारक रहा होगा? जरा सोचिए, एक कुंड है जिसके चारों ओर 5 बरामदे हैं, उसमें पता नहीं कितने संख्या में कटे, फटे, टूटे और विक्षिप्त लोग भरे पड़े हैं, केवल एक ही आस लिए हुए कि कब पानी हिलाया जाए और वह उसमें सबसे पहले उतर पड़े। और फिर पानी हिलने का शब्द और उसमें उतरने के लिए लोगों का जुनून, आपाधापी, धक्का मुक्की, चिल्लाहट, असहाय लोगों का कराहना, सचमुच कैसा दृश्य बनता होगा। और वह अंधा व्यक्ति निश्चय ही अलाभ की स्थिति में था, क्योंकि वह केवल लोगों के शोरगुल के द्वारा ही जान पाता था कि पानी हिलाया जा रहा था, और वह भी जी तोड़ कोशिश करता होगा कि वह उसमें उतर सके, और सभी लोग सबसे पहले उतरने की कोशिश कर रहे थे। परंतु जो पहले उतरा उसने चंगाई पाई, चाहे कोई भी बीमारी क्यों न हो। आप कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि पहले वाला चंगाई पाता था? हम जानते हैं कि विश्वास में जबरदस्त सामर्थ है। यीशु ने कहा कि विश्वासी के लिए हर चीज संभव है। कितनी बार यीशु ने लोगों से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। विश्वास में सामर्थ है, शक्ति है, वो आपके लिए परमेश्वर के कार्यों को क्रियाशील करती है। और प्राय लोगों को अपना विश्वास जगाने के लिए एक संपर्क बिंदु की आवश्यकता होती है। कई बार विश्वास निराशावादी या सुप्त होता है। परमेश्वर में हमारा विश्वास प्राय निराशावादी या सुप्त होता है, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा, मैं तो केवल तथ्यों का वर्णन कर रहा हूं। परंतु निराशावादी या सुप्त विश्वास अधिक फलदायक नहीं होता। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, इसलिए मैं जानता हूं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अपने निराशापूर्ण या सुप्त विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर कटी हुई बांह को नया कर सकता था। मैं इसलिए निराशापूर्ण या सुप्त विश्वास को व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर इस कथन पर विश्वास करने के लिए क्रियाशील विश्वास नहीं है। आप कहते हैं ठीक है, क्या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की? निश्चय ही। क्या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। तब यदि निश्चय ही परमेश्वर सब कुछ करने में समर्थ है, तो वह मनुष्य की कटी हुई बांह के स्थान पर एक नई बांह लगा सकता है। मैं विश्वास करता हूं वो कर सकता है, लेकिन मैं नहीं विश्वास करता कि वो करेगा। इस प्रकार एक सुप्त अथवा निराशावादी विश्वास और जागृत या क्रियाशील विश्वास में आपने अंतर देखा। एक जागृत क्रियाशील विश्वास हमेशा कहता है कि होगा। अब कई बार हमें किसी प्रकार के स्थान, किसी बिंदु अथवा अनुभव की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने निराशावादी अथवा सुप्त विश्वास को, जिसमें कुछ प्राप्त नहीं होता, जागृत या क्रियाशील विश्वास में, जिसके द्वारा बहुत कुछ होता है, परिवर्तित करें। और प्राय संपर्क बिंदु अत्यंत मूल्यवान होता है। अब इन लोगों के साथ संपर्क बिंदु का विकास इस सीमा तक हुआ कि जब भी पानी हिलाया जाता तो वे विश्वास करते थे कि जो भी पहले व्यक्ति पानी में उतरेगा वह चंगाई पाएगा, चाहे उसे कोई भी बीमारी अथवा रोग हो। और चूंकि उन्हें विश्वास था कि ऐसा ही होगा, इसलिए जैसे ही पहला व्यक्ति पानी को छूता था, उसे तुरंत विश्वास हो जाता था कि परमेश्वर उसे चंगाई दे रहा है। और चूंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसे चंगा कर रहा है, इसलिए वह चंगा हो जाता। उसका विश्वास क्रियाशील हो जाता था। वैसे ही जैसे उस स्त्री ने अपने मन में सोचा, जिस क्षण मैं उसके वस्त्र को छूंगी मैं उस बीमारी से मुक्त हो जाऊंगी, और इसलिए वह भीड़ में से घुसती हुई यीशु के इतने निकट पहुंच गई कि वह उसका वस्त्र छू सकती थी। और जिस क्षण उसने छुआ, उसने विश्वास किया, उसका विश्वास जागृत हुआ और परमेश्वर की शक्ति ने उस पर कार्य किया और यीशु में से सामर्थ निकली और वो चंगी हो गई, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास का उत्तर देता है। आपका विश्वास ही आपके लिए बाधा या अनुग्रह बन सकता है। मैं किस पर विश्वास करता हूं यह महत्वपूर्ण है। यदि मेरा विश्वास है कि किसी कार्य को परमेश्वर नहीं कर सकता या नहीं करेगा, तो प्राय होता यह है कि परमेश्वर नहीं करता। यदि मेरा विश्वास है कि किसी कार्य को परमेश्वर करेगा, तो प्राय परमेश्वर उस कार्य को करता है। मैं जब बालक था, उस समय दुर्भाग्यवश बहुत अधिक नकारात्मक प्रचार किया जाता था और अनेक लोग उस नकारात्मक प्रचार के शिकार हुए। मैंने अनेक चीजों के विरुद्ध बहुत उपदेशों को सुना था। उस समय के प्रचारकों का मुख्य विषय जिसके विरुद्ध वे बोलते थे, सिगरेट पीना था। मैंने उनको बार बार ये कहते हुए सुना था कि यदि आप सिगरेट पिएंगे तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा, आप मसीह कहलाने योग्य नहीं रहेंगे, यदि आप सिगरेट पिएंगे तो आप परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते। और मैंने इन तमाम बातों को बहुत सुना। अब मेरे ऐसे अनेक साथी थे जिन्होंने शिक्षा और प्रचार को सुना और उस पर विश्वास भी किया। इस प्रकार जब प्रयोग के तौर पर उन्होंने सिगरेट पी तो उन्हें विश्वास था, अब परमेश्वर मुझे नहीं बचा सकता, मैं सिगरेट पीता हूं इसलिए मैं पापी हूं और जब तक मैं सिगरेट पीऊंगा मैं बच नहीं सकता। और चूंकि उन्होंने विश्वास किया था कि वे जब तक सिगरेट पिएंगे वे बच नहीं सकते और ये बात उनके लिए सच हो गई, उन्हें बचाया नहीं जा सकता था, क्योंकि जैसा आप विश्वास करेंगे वह उस मामले में हकीकत बन जाएगा। दुर्भाग्यवश इस नकारात्मक प्रचार से अनेक लोग अपना जीवन नष्ट कर चुके हैं। एक स्थान पर मेरे साथ एक मनुष्य था जिसने मुझसे कहा, चक मैं मसीह बनना चाहता हूं, मैं कलीसिया में आना चाहता हूं, मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं। मैं अपनी कलीसिया में जवानों का निर्देशक था, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा था और प्रसन्न था और उन्हीं सब कामों को मैं अब करना चाहता हूं, परंतु मेरे काम के कारण मुझे बहुत तनाव रहता था और शाम को काम से जब मैं थका हारा घर लौटता था तो आराम से बैठकर बियर पीना पसंद करता था और अब मुझे ऐसा लगता है मेरी उस आदत के कारण मेरा जीवन बचाया नहीं जा सकता। मैंने कहा, यह कोई बात नहीं है, और उसे झटका देने के लिए मैंने कहा, मैं भी बहुत बियर पिया करता था लेकिन अब मैंने उसे छोड़ दिया है। अनेक लोग परमेश्वर से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि वे आदतों में और अपनी जीवन शैली में इतने फंसे होते हैं कि वे उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। उन्होंने बंधन मुक्त होने का प्रयास किया, उन्हें बताया जा चुका था कि वे जब तक इन आदतों में फंसे रहेंगे वे परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते, और इसलिए उन्होंने सिगरेट पीने की लत को छोड़ने की कोशिश की परंतु वे छोड़ नहीं सके, और इसलिए वे सोचते हैं, हे मेरे परमेश्वर, काश कि मैं बच सकता, काश मैं परमेश्वर के संतान बन सकता, और उनके मन में इस बात की तीव्र इच्छा है परंतु वे अपनी आदत के बंधन से स्वयं को मुक्त करने में असमर्थ पाते हैं। वे सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते, वास्तव में वे गाड़ी को घोड़े के आगे लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे दें और वह आपके जीवन में उन चीजों की चिंता करेगा कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके जीवन को यीशु मसीह के अनुरूप ढाल सके, वह आपकी आदतों को बदल देगा। प्राय हम जीवनों में परमेश्वर के सम्मुख स्वयं को धार्मिक प्रमाणित करने के लिए उल्टे काम करते हैं, परंतु यह सदा ही असंभव नहीं तो भी कठिन अवश्य है। परमेश्वर का आत्मा अंदर से बाहर की ओर काम करता है, वह हमारे अंदर इस प्रकार कार्य करता है कि उसका प्रभाव मेरे बाह्य जीवन पर पड़ता है, इसलिए हमारा विश्वास, जिस पर मैं विश्वास करता हूं, मेरे जीवन में वास्तविकता बन जाता है। परंतु विश्वास को जागृत करने की संभावना है और प्राय उसे करने में संपर्क सूत्र का महत्व होता है। यदि आप में से कोई बीमार हो तो वह कलीसिया के पुरनियों को बुलाएं और वे परमेश्वर के नाम से उस पर तेल मलें और उनके विश्वास से की हुई प्रार्थना उस बीमार की रक्षा करेगी और परमेश्वर उसे बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा करेगा। अब जिस समय कलीसिया के पुरनिये आते हैं और यीशु के नाम से तेल मलकर प्रार्थना करते हैं तो उस समय संपर्क बिंदु से विश्वास का उद्भव होता है। मैं जानता हूं कि जैसे ही कलीसिया के पुरनिये यहां आकर प्रभु यीशु के नाम से मुझे तेल मलेंगे और प्रभु के नाम से प्रार्थना करेंगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। ओह परमेश्वर अनुग्रह करे, मैं उनकी आने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। ओ परमेश्वर की स्तुति हो। और जैसे ही द्वार की घंटी बजती है आप जानते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, वे आ गए, अब कुछ ही समय में मैं चंगा होने वाला हूं। जिस क्षण वे परमेश्वर का नाम लेकर मुझे तेल मलेंगे और सिर पर हाथ रखकर प्रभु के नाम से प्रार्थना करेंगे उसी क्षण मैं चंगा हो जाऊंगा। और क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर और उसके वचन पर विश्वास करता हूं, इसलिए जिस समय वे यीशु का नाम लेकर अपना हाथ मुझ पर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे उसी समय मैं चंगा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने विश्वास को अब जागृत कर लिया है। अब तो वो बात ही नहीं कि क्या परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है, परंतु परमेश्वर तो मुझे इसी क्षण चंगा कर रहा है और यही वह चीज है जिसे विश्वास को जागृत करना कहते हैं। इसलिए ये लोग कुंड के चारों ओर आस लगाए पड़े थे, बैठे थे कि कब पानी हिलाए जाए, क्योंकि इसके द्वारा वह संपर्क बिंदु बनता है जिससे उनका विश्वास प्रवाहित होता हो और उसके द्वारा वह काम होता है जिसे परमेश्वर उनके जीवनों में करना चाहता था। परंतु यह मनुष्य पिछले 38 साल से लकवे का रोगी था और वहां काफी दिनों से पड़ा था, परंतु वह इतना बेबस था कि जब कभी पानी हिलाया जाता तो इससे पहले कि वह अपना शरीर पानी में डाले कोई उससे पहले ही पानी में चला जाता था। इस प्रकार इसी अवस्था में पड़े पड़े उसे वर्षों बीत गए और इसी आशा से प्रतीक्षा करता रहा कि कभी तो वह दिन आएगा जब वह पानी में उतरने वाला पहला व्यक्ति होगा। लेकिन हालात ऐसे थे कि उसका कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। आप जानते हैं कि जो लोग उसके चारों ओर थे और उसे पकड़े हुए थे कि जैसे ही पानी हिलाए जाए उसे अंदर फेंक दें। इस प्रकार वह एक आशा विहीन हालत में था और यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहेगा? और उसने अपनी समस्या यीशु के सन्मुख रखी, बेशक मैं चंगा होना चाहूंगा, परंतु कोई ऐसा नहीं जो मेरी सहायता करे। जब भी पानी हिलाया जाता है कोई मुझसे पहले पानी में उतर जाता है। और फिर यीशु ने उसे उस असंभव कार्य को करने के लिए कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। यीशु जिस प्रकार लोगों को असंभव कार्य करने की आज्ञा देता था, मुझे उसका तरीका पसंद आता है, क्योंकि जब कभी परमेश्वर आपको कोई असंभव कार्य करने की आज्ञा देता है तो आपके सामने दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प यह है कि आप यीशु द्वारा दी गई आज्ञा को मान लें, और दूसरा यह कि आप उस पर बहस करें। अब यह मनुष्य कह सकता था, जनाब आप किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपसे कह चुका हूं कि मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी सहायता करे, और इस समय तो पानी भी नहीं हिलाया जा रहा। आप क्या सोचते हैं, यदि मैं इस योग्य होता कि अपनी खाट उठा सकूं तो क्या इतने वर्षों से यहां पड़ा रहता? मैं यहां 38 वर्षों से पड़ा हूं जनाब, और किसी प्रकार से खड़ा नहीं हो सकता। और इस प्रकार वो यीशु की आज्ञा पर बहस करके विकलांग ही बना रहता। परंतु उसने एक बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लिया, उसने यीशु की आज्ञा मानी। और हम आगे पढ़ते हैं, और वह मनुष्य तुरंत ही चंगा हो गया, उसने अपनी खाट उठाई और चला गया। उसने यीशु की आज्ञा माना अधिक उत्तम जाना, यद्यपि वह जानता था कि वह आज्ञा असंभव करने की थी। अब हमारे जीवन में भी प्रभु हमें आज्ञा देता है जो हमारी दृष्टि में असंभव सी लगने वाली आज्ञा होती है। शायद हमारे जीवन में भी कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें हमने वर्षों तक संघर्ष किया हो और जिसमें हमें पराजय की स्थिति में रखा गया हो, और प्रभु ने कहा, ठीक है, दोबारा ऐसा मत करना। हम कहते हैं, प्रभु आप नहीं जानते कि मैं इसे कितना छोड़ना चाहता हूँ। ओह, आप नहीं जानते कि जब मैं इस कार्य को करता हूँ तो कितना परेशान होता हूँ, इसे करने में मुझे कोई आनंद नहीं आता। और हम यीशु से बहस करते हैं और उसे बताते हैं कि हमने कब कब छोड़ने की कोशिश की। हम उसे अपने उन कार्यक्रमों के विषय में बताते हैं जिनसे हम संलग्न हैं, उन सारी पुस्तकों के विषय में प्रभु यीशु से बताते हैं जिन्हें हमने पढ़ा है, उस धन के विषय में जिसे हमने अपने व्यवहार शैली को बदलने में खर्च किया और फिर भी हम वैसे ही रहे। हम उसकी आज्ञा मानने के बजाय उससे बहस करते रहते हैं। अब एक चीज जो हमें अवश्य सीखनी है वो यह है कि यद्यपि यीशु हमें एक असंभव सी लगने वाली आज्ञा देता है, परंतु वो उसे करने के लिए विकल्प खुले रखता है। यदि हम करना चाहें, यदि हमारी इच्छा हो, तो वह हमें उस घड़ी उस कार्य को करने की पूर्ण क्षमता, पूर्ण शक्ति और पूर्ण योग्यता देता है। उससे बहस मत करिए, बस उससे कहिए हाँ जनाब, और उसे कर डालिए। क्योंकि यदि तुम्हें उसकी आज्ञा माननी पड़े तो वह तुरंत ही तुम्हें वह सब आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएगा जो उसकी आज्ञा मानने के लिए आवश्यक है। इसलिए हम प्राय उन आज्ञाओं की तरफ देखते हैं और कहते हैं, प्रभु यह असंभव है, अब और अधिक नहीं, क्योंकि उसने मुझे इसे करने के लिए कहा था, और चूंकि यह तथ्य है कि उसने मुझे यह करने के लिए कहा, वो मुझे इसे करने की क्षमता भी देगा। इस प्रकार वो मनुष्य चंगा किया गया, उसने अपनी खाट उठाई और चला गया। परंतु वे इस बात पर गौर नहीं कर रहे थे कि वह कौन सा दिन था। नवी आयत में लिखा है, और वह शब्द का दिन था। और अभी वह अधिक दूर नहीं गया था कि कुछ व्यक्तियों ने, जो काले कपड़े पहने थे, सिर पर काली टोपी लगाए थे और उनके काले घुंघराले बाल थे, उससे जो चंगा किया गया था कहा, आज शब्द का दिन है, आज तुझे खाट उठाना उचित न था। मनुष्य का परंपराओं का पालन करना मेरे लिए एक रुचिकर विषय है, परंतु वास्तव में जिस बात को देखकर मुझे आश्चर्य होता है वह यह है कि इन परंपराओं ने मनुष्य के जीवन में कितना पक्का स्थान बना लिया है। आप जानते हैं, मेरे विचार में इन परंपराओं से मुक्त होना शायद सबसे कठिन बात है। इन परंपराओं से मुक्त होना शायद पहाड़ ढकेलने जैसा ही कठिन है। दुर्भाग्यवश कलीसिया में भी अनेक परंपराओं ने जन्म ले लिया है। कलीसिया की परंपराएं जिनकी जड़ें धर्म में बेबीलोन के रहस्यों तक फैली है, परंतु अब वे कलीसिया की परंपरा का एक भाग है। परंतु चूंकि ये परंपरा है, ये हमारे अंदर इतनी गहराई से समाई हुई है कि जब मार्टिन लूथर ने इन्हें तोड़ना चाहा, हालांकि उसने तोड़ा भी, फिर भी उसमें की समस्त बुराइयां समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उसके द्वारा प्रोटेस्टेंट सुधारवाद लाया गया जो बहुत कुछ बाबुल के रहस्य धर्म रीति के अनुरूप ही था। इसलिए जैसा कि यीशु ने यूहन्ना के माध्यम से मुखरित सुधारवाद के विषय में सर्दीस की कलीसिया को लिखवाया, उसने कहा, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत सी बातें तुम्हें फंसाए हुए हैं, जिनका संबंध रहस्यमय बाबुल के धर्म से है और जिनका यीशु की देह में कोई स्थान नहीं। परंतु परंपराओं से मुक्त होना अत्यंत कठिन है। उन्होंने मनुष्यों के बीच में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। सप्त के विषय में उनके अंदर कुछ परंपराएं विकसित हो गई थी। उन्होंने सप्त के दिन का अर्थ अपनी इच्छा अनुसार लगाना चाहा। उनके पास मिशना या तालमुद था, जो मूसा की व्यवस्था पर टिप्पणियां थी, और मिशना में सप्त के दिन की व्याख्या 23 अध्यायों में की गई है। परमेश्वर ने कैसे कहा, तू सप्त के दिन को याद रखने के लिए पवित्र जान कि तू 6 दिन तक अपने सब काम करेगा, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, इसलिए सप्त के दिन को याद रखो, उसे पवित्र रखो। अब उन्होंने इस विशेष व्यवस्था की व्याख्या आरंभ करनी चाहिए और मिशना के 23 अध्यायों में आप व्यवस्था का अनुवाद पाएंगे कि उन व्याख्याओं का सप्त के दिन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब एक बार जब हम सप्त के दिन यरूशलेम में थे, हमारी बस सड़क पर जा रही थी और वहां एक छोटा यहूदी लड़का था जो लगभग 10 या 12 साल का होगा। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, सिर पर काली टोपी थी और लंबे घुंघराले बाल थे। और जब बस उसके पास से गुजरी तो उसे एहसास हुआ कि बस सप्त के दिन चल रही थी और वो हमें देखकर भांति भांति से मुंह बनाने लगा। अंत में उसने हमें जीभ चिढ़ाई क्योंकि हमने सप्त के दिन बस में सफर करने का दुस्साहस जो किया। मेरा अनुमान है कि उसका हमें यूं मुंह चिढ़ाना व्यवस्था अनुसार ही था, किंतु यरूशलेम नगर में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां हम बस नहीं ले जा सकते थे। मियां शरीम के इलाके में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां मार्गों पर अवरोधक लगे हुए थे, और यदि हमने उस क्षेत्र से बस निकालने का प्रयत्न किया होता तो यद्यपि सप्त के दिन के वजन उठाना व्यवस्था के विरुद्ध था, तो भी उन्होंने हम पर पत्थरवा किया होता व्यवस्था अनुसार। उन्होंने उस मनुष्य को रोक लिया, वह सप्त के दिन अपनी खाट उठाकर जा रहा है। अरे दोस्त, आज सप्त का दिन है, आज के दिन खाट उठाना व्यवस्था अनुसार उचित नहीं है। और उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा अपनी खाट उठा के चल फिर। अब इसमें कोई शक नहीं कि वे उस व्यक्ति को जानते थे। यरूशलेम में वैसे तो ज्यादा मनुष्य नहीं थे, लेकिन वह क्या मनुष्य था जो लगभग 38 साल से अपंग पड़ा था, और लोगों के बीच उसकी अलग पहचान थी। लोग उसे जानते थे और पहचानते थे, और अब वह इस तथ्य से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था कि वह चंगा हो चुका था। निश्चय ही जो 38 वर्ष के लंगड़ेपन से मुझे चंगा कर सकता है, अवश्य ही उसके वचन में अधिकार है, और इसलिए उसने मुझसे कहा कि अपनी खाट उठा के चल फिर। 12वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस स्थान में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अब इस विशेष प्रकरण में ऐसा लगेगा कि यीशु ने उस मनुष्य की बीमारी को उसके जीवन के कुछ पापों से संबंधित कर दिया था। फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इस बात की संभावना है कि पाप और किसी बीमारी में कुछ संबंध हो, परंतु इसको एक आम बात समझना सरासर गलत होगा, और यह कहना कि किसी भी बीमारी अथवा रुग्णावस्था का सीधा संबंध कुछ प्रकार के पाप से है, यह बहुत गलत होगा। यही गलती अय्यूब को तसल्ली देने वालों ने की थी, और यह एक ऐसी गलती है जिसे प्राय मनुष्य अपनी अर्धचेतन अवस्था में अपने मस्तिष्क में करते हैं, जब कोई मनुष्य काफी बीमार या संक्रामक हो जाता है। और दुर्भाग्यवश ऐसे प्रचारकों की कमी नहीं जो ऐसे भ्रामक विचारों का पोषण करते हैं। यदि तुम में जरा भी विश्वास होता तुम चंगे हो सकते थे। केवल अपने मार्ग सीधे करो। परमेश्वर हरेक को चंगाई देना चाहता है, और यदि तुम्हें चंगाई नहीं मिल रही है इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कुछ गड़बड़ियां हैं, तुम्हारे विश्वास में कुछ कमी है। और वे क्या कर रहे थे कि बेचारे रोगी मनुष्य पर भारी बोझा लाद रहे हैं जिसकी उसको कोई जरूरत नहीं। उनके मन में दोष भावना जागृत करने से उनकी हालत और नाजुक बन जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे तसल्ली देने वालों के लिए परमेश्वर के पास विशेष न्याय है। वह मनुष्य यीशु के विषय में नहीं जानता था कि वह कौन है, जब तक कि यीशु ने उसे मंदिर में न पाया, और उसकी दशा का उसके जीवन के पाप से कुछ संबंध अवश्य था। इसलिए यीशु ने उसे चिताया, अपने मार्ग पर चल और फिर पाप न करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु ने सिखाया कि जब दुष्टात्मा किसी मनुष्य को छोड़ती है तो वह भूखे स्थानों से जाते हुए किसी घर को ढूंढती है कि वो कहां रहे, और जब उसे कोई स्थान नहीं मिलता तो लौटकर फिर उसी घर में आती है जहां से उसे निकाला गया था, और उसी घर को जब वह साफ सुथरा पाती है तो बाहर जाकर और सात दुष्टात्मा को अपने साथ ले आती है ताकि वहां आराम से रहे। इसी कारण उस व्यक्ति की हालत पहले से भी बदतर होती जाती है। हमें धर्मशास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य के लिए अधिक श्रेयस्कर है कि वह सच्चाई के मार्गों को न पहचाने, परंतु यदि वह उन्हें पहचाने अथवा उन पर चलता है और फिर उनसे हट जाता है तो यह अत्यंत दुखदायी है। यदि आपने अपने जीवन में परमेश्वर के काम करने का बेड़ा उठाया है तो परमेश्वर के प्रति आपकी जवाबदारी बनती है। यदि आप किसी कार्य के लिए परमेश्वर के समीप आते हैं तो निश्चय ही उसके प्रति आपकी भी जिम्मेदारी है। केवल परमेश्वर के कामों के प्रति समर्पण काफी नहीं है, अपितु अपना जीवन उससे समर्पित करें। यह जीवन आखिर उसी का दिया हुआ है। 15वीं आयत में लिखा है, और वो मनुष्य चला गया और उसने यहूदियों से कहा कि वह यीशु ही था जिसने मुझे चंगा किया। और यह एक ऐसी बात थी जिसके लिए यहूदियों ने कभी भी यीशु को क्षमा नहीं किया, और आखिरकार यही कारण उसको क्रूस पर ले गया, क्योंकि उसने तथा कथित शब्द के नियमों का उल्लंघन किया था। 16वीं आयत, इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे काम शब्द के दिन करता था। अब उनके लिए व्यवस्था की परंपराओं को पालन करना अधिक महत्वपूर्ण था, न कि किसी व्यक्ति का चंगा किया जाना। यीशु ने उनसे एक बार कहा था, तुम में से ऐसा कौन है जिसका बैल अथवा गधा शब्द के दिन गड्ढे में गिर जाए और उससे न निकाले। अब यदि आप एक मूक पशु के प्रति इतने संवेदनशील हैं, तो आप क्या नहीं सोचते कि परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचा वह मनुष्य के प्रति भी संवेदनशील होगा, फिर चाहे वह सप्त का दिन हो अथवा नहीं। इसलिए वे यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे काम सप्त के दिन किया करता था। इस पर यीशु ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। क्या आप इस बात से खुश नहीं हैं कि हमारा पिता सप्त के दिन भी काम करता है? क्या होता यदि परमेश्वर साप्ताहिक अवकाश लेता, अर्थात सप्त के दिन अवकाश लेता? जरा विचार कीजिए उस गड़बड़ी पर जो परमेश्वर द्वारा सप्त के दिन अवकाश लेने के द्वारा होती, जब लोग एक दिन के रुके हुए कामों को समायोजित करने का प्रयास करते। वह जो इसराइल का रक्षक है न ऊंघेगा और न सोएगा। परमेश्वर कभी कोई अवकाश नहीं लेता। परमेश्वर हमेशा और हर समय अपने लोगों के जीवनों में कार्य करता है, और इसलिए यीशु ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। 18वीं आयत में ऐसा लिखा है, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सप्त के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। अब कुछ लोग हैं जो आजकल कहते हैं, यीशु ने कभी नहीं कहा कि वह परमेश्वर है, कि ये सब कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें लोगों ने उसके चारों ओर खड़ा कर दिया, एक आत्मिक और एक पूर्ण दैवीय वातावरण। ये लोग जो आज अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, इसे पढ़ते हैं या इनके पढ़ने के द्वारा समझ को प्राप्त करते हैं, जिन लोगों से यीशु ने बातचीत की वे अच्छी तरह से समझते थे कि यीशु क्या कहना चाह रहा है और वह क्या कर रहा है। उनके मन में लेश मात्र को भी संशय नहीं था कि वह कौन से अधिकार प्राप्ति की बात कर रहा था, क्योंकि वह कह रहा था कि कि वह परमेश्वर का पुत्र था। वे जानते थे कि वह स्वयं को परमेश्वर के तुल्य बना रहा था और वे इसी बात के कारण उसे मारना चाहते थे। 19वीं आयत, तब यीशु ने उनसे कहा, और अब वह उनसे बातचीत करना शुरू करता है और उनसे सच सच शब्द से उसका क्या तात्पर्य है समझाने की कोशिश करता है। शब्द का दोहराया जाना उसके महत्व को बताता है, अर्थात ठीक है अब इसे सुनो। मेरा मतलब है कि यह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा गया कि मैं कुछ कहने जा रहा हूं। 19वीं आयत में आगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। और इसलिए यहां यीशु यह अधिकार जता रहा है कि उसके द्वारा किए गए कार्य ही परमेश्वर के कार्य हैं, कि वे स्वयं उसके कार्य नहीं हैं, कि वह उन्हें परमेश्वर के कार्य दिखा रहा था और उसी के कार्य कर रहा था। मैं इस मनुष्य के लिए चंगाई लाया, परंतु वह परमेश्वर ही था जो चंगाई लाया। मैं परमेश्वर से अलग कार्य नहीं करता, मैं परमेश्वर के साथ मिलकर ही कार्य करता हूं। सप्त के दिन कार्य करने के कारण तुम मुझ में दोष ढूंढते हो, परंतु यह परमेश्वर का कार्य है जो सप्त के दिन किया गया। क्या तुम इतना भी नहीं समझते? परंतु वे इस बात को समझ नहीं सके, क्योंकि उनकी आंखों पर परंपराओं की पट्टी बंधी थी। 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वो आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वो इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। परमेश्वर अपने कामों को करना जारी रखेगा और वो इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा ताकि तुम उन्हें देखकर अचंभा करो। 21वीं आयत, जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। और इस प्रकार जब हम यीशु की सेवकाई को देखते हैं, हमने देखा कि कैसे उसने नगर में उस विधवा के पुत्र को जीवित किया, कफरनऊ में याइर की पुत्री को जीवित करना तथा अंत में लाजर को जिलाना चाह जो मर गया और जिलाया भी, क्योंकि परमेश्वर उनको भी जीवित कर सकता था जो मर चुके हैं, और पुत्र भी पिता का काम करते हुए जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। 22वीं आयत में, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। मैं पिता की इच्छा अनुसार उसके साथ मिलकर उसका काम करता हूं कि सब लोग पुत्र का आदर करें। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि हमें पुत्र का आदर करना चाहिए। अब एक झूठे संप्रदाय का एक निशान यह है कि वे पुत्र का आदर करने में असफल रहते हैं। अब तीन चीजें हैं जिन पर हमेशा शैतान आक्रमण करने की ताक में रहता है। पहला, परमेश्वर का वचन, दूसरा मसीह का दैवीय स्वरूप, और तीसरा पवित्र आत्मा के कार्य। वह परमेश्वर के कार्यों पर आक्रमण कर रहा है, वह परमेश्वर के वचन पर हमला करता है, वह पवित्र आत्मा के कार्यों पर हमला करता है। इसी कारण परमेश्वर ने अपने कार्यों को करने के लिए यीशु को माध्यम बनाया। 23वीं आयत में आगे लिखा है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। अनेक लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, ठीक है मैं परमेश्वर पर विश्वास तो करता हूं, परंतु यीशु की आवश्यकता नहीं समझता, मैं वास्तव में यीशु के विषय में नहीं जानता। यीशु खुलेआम कह रहा है, देखो यदि तुम मेरा आदर नहीं करते तो तुम पिता का भी आदर नहीं करते। और इसलिए यहोवा विटनेस और ये जो यीशु को आदर नहीं करते, यद्यपि वे दावा करते हैं कि हम यहोवा के गवाह हैं, वास्तव में वे पिता का आदर नहीं करते। 24वीं आयत में आगे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यीशु के वचन पर विश्वास करना पिता पर विश्वास करना है जिसने उसे भेजा है। और आगे 24 में लिखा है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो मेरा शब्द सुनता है, अर्थात जो मेरे वचन का पालन करता, उसका आदर करता और परमेश्वर पर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन पा चुका है। तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हो। अब देखिए कि मनुष्य ने कलीसिया के आरंभ से इसकी किस प्रकार विवेचना की है, और हम मनुष्य पर कितने नियम कानून लगाते और पाबंदियां ठोकते हैं कि हम कहें क्या तुम जानते हो, यदि तुम इन इन और इन बातों का पालन करो तो समझो तुम्हारे सारे पाप धुल गए और तुम परमेश्वर के संतान बन गए। इन नियमों का पालन करो और इन विधियों को पढ़ो और उनका अनुगमन करो, अपना दशवांश अदा करो और इसी प्रकार की अनेक बातें, और हम उन पर यह सारा बोझ लाद देते हैं। जबकि यीशु ने कहा, सुनो, यदि केवल तुम मेरे वचनों को सुनो और उस पर विश्वास करो जिसने मुझे भेजा है, तो तुम अनंत जीवन के भागी होगे। तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी और तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करोगे। ये शैतान के द्वारा ही परमेश्वर के संतानों पर विपत्तियां लाई जाती है और वह इन कामों में बहुत प्रवीण है, वह कभी समाप्त नहीं करता। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में स्वर्गदूत चिल्लाते हैं पृथ्वी पर के रहने वालों पर, हाय हाय, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता था गिरा दिया गया है। भाइयों पर दोष लगाने वाला, ये शैतान की एक पदवी अथवा दूसरे शब्दों में उसकी पहचान है। और वह किस प्रकार हम पर दोष लगाता है? परंतु यदि तुम यीशु की आवाज सुनो और परमेश्वर पर विश्वास करो तो तुम अनंत जीवन के वारिस होंगे। तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी और तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करोगे। आगे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। यीशु शीघ्र ही अधोलोक में उतरने वाला है और वहां बंदीगृह की आत्माओं में प्रचार करेगा ताकि उन्हें बंधन से मुक्त करे। वह समय आ रहा है, बिल्कुल आ चुका है कि मृतक परमेश्वर का शब्द सुने और जो सुनेंगे वे जिएंगे। 26वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु ने कहा, कोई भी मनुष्य मुझसे मेरा जीवन नहीं लेता, मैं स्वयं अपना जीवन देता हूं। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और मुझे उसे लेने का भी अधिकार है। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया गया, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। 28वीं आयत में लिखा है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। यीशु सेवकाई के विषय में कह रहा था जिसे वह अपने विश्वासियों के साथ अथवा प्रति जो अब्राहम के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो विश्वास में मरे थे किंतु जिन्होंने प्रतिज्ञा को नहीं पाया परंतु उसे दूर से आता देख गले लगाने को आतुर थे, विश्वास से उसमें स्थिर रहे और उस उद्धार के पूरे होने की बाट जो रहे थे। 29वीं आयत से आगे लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। वह पुनः कह रहा है कि वह पिता के साथ पूरे तालमेल के साथ कार्य कर रहा है। आगे वह फिलिप्पुस को बताएगा, मैं जो कार्य करता हूं स्वयं अपने आप से नहीं करता परंतु मेरा पिता जो मुझ में रहता है वही ये कार्य करता है। उसी प्रकार की गवाही वह यहां दे रहा है, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। मैं पिता के कामों को तुम्हारे बीच में करता हूं। 31वीं आयत, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। और अब वह अपने विषय में गवाही की बात करने जा रहा है, परंतु उसने कहा, यदि मैं स्वयं अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। अब जबकि वह सच्ची गवाही नहीं होगी परंतु यदि वह स्वयं अपनी गवाही देगा तो उसकी गवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 32 से आगे लिखा है, एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। इसलिए मैं, यदि मैं स्वयं अपनी गवाही दूं तो भी मेरी गवाही सच्ची है। परंतु यूहन्ना ने मेरी गवाही दी और तुमने उसकी बातें सुनी और उसकी बातों से तुम संतुष्ट हुए। परंतु उसने कहा, मैं अपने विषय में यूहन्ना की गवाही को अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता कि मैं कौन हूं, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। और यहां यीशु अपने उद्गम की गवाही के रूप में उसके द्वारा किए गए कार्यों की और उसके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों की दुहाई दे रहा है। अब निकुदेमुस उसके पास आया और कहा, गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। और जब निकुदेमुस उसके पास आया तो वह उसके द्वारा किए गए कामों की गवाही के रूप में मानता है। फिलिपुस ने प्रभु से कहा, प्रभु, तू केवल हमें पिता को दिखा दे तो वही हमारे लिए काफी होगा। और यीशु ने कहा, फिलिपुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुमने अभी तक मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तब तू क्यों मुझसे कहता है कि हमें पिता को दिखा? क्या तू अब भी विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में? जो कार्य मैं करता हूं वह स्वयं मैं नहीं बल्कि पिता मुझ में कर रहा है। अब तो विश्वास कर कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में, नहीं तो मेरे कामों के द्वारा ही मेरा विश्वास कर। वह अपने अधिकार को और उन कामों को जो वह कर रहा था गवाही के रूप में पेश कर रहा था, क्योंकि वह परमेश्वर के कार्य को कर रहा था और वास्तव में उसके काम उसके सशक्त गवाह थे कि वह कौन है। और इस बात से इनकार करना कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उन सब आश्चर्य कर्मों और उन कामों से इनकार करना है जो उसके द्वारा किए गए। अब आप अपने चारों ओर अवश्य ही कुछ ऐसे उन्मुक्त विचार वालों को पाएंगे जो सदा उपरोक्त कथन को सही ठहराने का प्रयत्न करते हैं, तर्कसंगत करने का प्रयास करते हैं। और जब हम अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 की भीड़ को खिलाया तो लोग कई तरह के लोग बातें बनाते और बताते हैं कि उन दिनों प्रत्येक जन अपना दिन का भोजन अपने चौगे की ढीली और लंबी आस्तीन में रखता था जो कलाई पर बंधी रहती थी, और वे लोग सब स्वार्थी थे और यदि कोई अपना भोजन किसी कारणवश नहीं लाया तो भी वे उसके साथ अपना भोजन बांटना नहीं चाहते थे, और वे स्वार्थीपन से वहां बैठ गए और दूसरों के सामने अपना भोजन नहीं करना चाह रहे थे ताकि किसी को देना न पड़े। परंतु आखिरकार एक प्यारा सा बेटा सामने आया और कहा, लो यीशु, मैं आपको अपने हिस्से का खाना देता हूं। लोग उस प्यारे बच्चे के इस निस्वार्थ उदाहरण से इतने प्रभावित हो गए कि कोई चीज उनके मर्म को भेदती हुई निकल गई और एक आश्चर्य कर्म हो गया। उन सबों ने अपनी अपनी आस्तीनों को ढीला किया और एक दूसरे के साथ अपने अपने भोजन को बांटा, और क्या आप जानते हैं कि पेट भर भोजन करने के पश्चात भी बचे हुए टुकड़ों के 12 से भी अधिक टोकरे उठाए गए। प्रेम बलिदान और त्याग की भावना का क्या ही अनूठा उदाहरण उस छोटे बालक द्वारा प्रस्तुत किया गया। और जो पाठ हम इसके द्वारा सीखते हैं कि छोटे बालक भी हमें दया धर्म का पाठ सिखा सकते हैं। इसलिए एक स्थान पर यीशु ने कहा कि जब तक तुम्हारा मन बालकों की तरह न हो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। निस्वार्थ, निश्चल, निष्कपट और परमेश्वर का राज्य। वास्तव में यीशु पानी पर नहीं चल रहे थे, वह तट के किनारे चल रहे थे और चेले लगभग किनारे पर पहुंच ही रहे थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था, और इसलिए यीशु पानी में होकर आगे बढ़ा और नाव पर चढ़ गया और वे किनारे पर पहुंच गए। कोई समस्या नहीं, बेचारे पतरस की आवाज ऐसी बंद हो गई थी कि वह अंदाजा नहीं लगा पाया और डूबने लगा और उसे मदद के लिए चिल्लाना पड़ा। ऐसा ही है ना, आंकड़े गलत नहीं बोलते परंतु गलत बोलने वाले मुखर होते हैं। लोग ऐसी ही बातें बनाते और सिखाते हैं, और पिता स्वयं जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। पिता मेरा गवाह है। जब यीशु को बपतिस्मा दिया गया परमेश्वर ने स्वर्ग से बोला और कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। पिता ने ही मेरी गवाही दी है। परंतु यीशु उसका संदर्भ नहीं दे रहे थे, वे तो पुराने नियम के वचनों के विषय में कह रहे थे। जहां पुराने नियम में परमेश्वर ने गवाही दी थी कि वह अपने पुत्र को इस संसार में भेजेगा, 37वीं आयत में लिखा है, पिता ने मेरी गवाही दी है, तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है, और आगे लिखा है, तुम पिता को नहीं जानते न तुमने पिता की आवाज सुनी है, क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। अब इस बात को प्राय गलत प्रकार से समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि यीशु कह रहा है तुम घर जाओ और पवित्र शास्त्र में ढूंढो। वह यह नहीं कह रहा है, वह कह रहा है तुम करो। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। पत्रस ने अपनी पत्री में कहा, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, परंतु हमारे पास जो भविष्यत वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, लेकिन मैं तुमसे उस पर विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा हूं जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। जो कुछ हमने देखा हमारे पास उससे भी बढ़कर है। हमारे पास परमेश्वर का वचन और पुराना नियम में परमेश्वर की गवाही है, और यदि तुम पवित्र शास्त्र में खोजो तो तुम पाओगे कि वे यीशु मसीह की गवाही देते थे। समस्त पुराना नियम उसी का एक गवाह था जो आने को था, जैसा कि यीशु ने कहा, मैं आया हूं जैसा कि पवित्र शास्त्रों में मेरे विषय में लिखा है कि मैं हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी करूं। वह यह घोषणा करता है कि पुराना नियम की पुस्तकों में जो कुछ लिखा है वह यीशु मसीह के विषय में लिखा गया। अब वह उनसे कह रहा है, तुमने वास्तव में उसकी आवाज को अर्थात परमेश्वर की आवाज को सुना ही नहीं है। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम समझते हो कि उसमें तुम्हारे लिए जीवन है, परंतु वास्तव में तुमने परमेश्वर की आवाज को सुना ही नहीं, क्योंकि वे पवित्र शास्त्र मेरी गवाही देते हैं। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। यहां संदर्भ मसीह विरोधी का है जो शीघ्र ही परिदृश्य पर आने वाला है। और यद्यपि यहूदियों ने यीशु मसीह को नकार दिया, वे इस मनुष्य को गले लगाएंगे जो एक छलावे के साथ शांति और समृद्धि का कार्यक्रम लेकर उपस्थित होगा। यदि आप किसी कट्टर यहूदी से बात करें तो वे आपको बताएंगे कि वे अपने मसीह को पहचान लेंगे, क्योंकि वह आएगा और अपने साथ उनका मंदिर भी लाएगा, और आज वे अपने मंदिर के पुनर्निर्माण का स्वप्न संजोए बैठे हैं, किंतु वे किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा में हैं जो मंदिर पुनर्निर्माण में उनकी अगुवाई करे, और वह व्यक्ति चाहे कोई भी हो उसको वे मसीहा जैसे अपनी पलकों पर बिठाएंगे, और मंदिर पुनर्निर्माण के चिन्ह की प्रतीक्षा में ही वे बैठे हैं कि देखें ये कार्य किस व्यक्ति द्वारा किया जाता है। परंतु चूंकि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के विषय में ठोकर खाई है, वे धोखा भी खाएंगे, और जो व्यक्ति मंदिर पुनर्निर्माण के संबंध में उनकी अगुवाई करने जा रहा है वो मसीह विरोधी होगा जो स्वयं अपने नाम से आ रहा होगा। परंतु वह अर्थात यीशु मेरे पिता के नाम से आया और मेरे पिता के अधिकार से आया, परंतु तुमने उसे ग्रहण नहीं किया, और यह व्यक्ति स्वयं अपने नाम से आता है और तुम उसे ग्रहण कर लोगे। और वह आने वाला व्यक्ति जो लोगों का राजकुमार होगा वह लोगों के साथ एक वाचा बांधेगा, परंतु सप्ताह के मध्य में ही वह वाचा तोड़ देगा और घृणा और द्वेष का ऐसा वातावरण तैयार कर देगा कि संभवतः लोग आपस में लड़ मरेंगे और वह स्थान निर्जन हो जाएगा। तब वह 3.5 वर्ष के पश्चात मंदिर में आने वाला है और वह घोषणा करता हुआ आएगा कि मैं ईश्वर हूं और मेरी उपासना करो, और उसके इन घृणित कार्यों से परमेश्वर का कोप भड़केगा और उन लोगों पर उंडेला जाएगा जो मसीह विरोधी हैं। 44वीं आयत में आगे लिखा है, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि दूसरों के आत्मसम्मान को अनावश्यक बढ़ाना, उसके ऊपर सम्मान गौरव और प्रशंसाओं का ढेर लगाना। जब मैं एक संप्रदाय का सदस्य था तो उस समय मेरे सामने जो सबसे विकट समस्या जिससे होकर मुझे गुजरना पड़ता था वह थी कोई धार्मिक सभा जहां लोग खड़े होकर एक दूसरे का सम्मान करते थे। वक्ताओं के परिचय के समय मुझे कड़वे घूंट पीने पड़ते थे, और जब वे खड़े होकर परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करने के लिए लंबी चौड़ी भूमिकाएं बांधते थे कि आज के दिन को परमेश्वर ने बहुत ही आशीषित किया है ताकि उसकी महिमा और गौरव हो सके, और फिर वो व्यक्ति खड़ा होता जिसको बोलना था और वो उस व्यक्ति के विषय में 2-4 सुंदर सुंदर बातें बोलता जिसने उसका गौरवशाली परिचय कराया था। वो बोला, मैं इन भाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो इस कार्य के लिए खड़े हुए, और इस प्रकार एक दूसरे की तारीफों का सिलसिला काफी देर चलता रहता। यीशु ने कहा, जितने समय तक तुम एक दूसरों की तारीफें करते रहोगे उस समय तक परमेश्वर की आवाज कैसे सुन सकते हो। परमेश्वर की आवाज यीशु मसीह को उठाना चाहती है। यूहन्ना ने कहा, अवश्य है कि वह बढ़े मैं घटूं, और यही शब्द परमेश्वर के सच्ची संतान के मुंह से निकलते हैं। वह मनुष्य की महिमा और गौरव नहीं अपितु परमेश्वर की महिमा और गौरव पसंद करता है। और यीशु ने कहा, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। 44 और 45 में लिखा है, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते कि किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। वही तो है जो तुम पर दोष लगाएगा अथवा लगाने जा रहा है। अब व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, अनुग्रह और सच्चा यीशु मसीह के द्वारा। यीशु ने कहा, मैं संसार पर दोष लगाने नहीं आया हूं बल्कि इसलिए कि यह संसार मेरे द्वारा बचाया जाए, और जो विश्वास करेगा उस पर दोष नहीं लगाया जाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह पहले ही श्रापित हो चुका है। दोष लगाने वाला तो मूसा है, व्यवस्था मूसा के द्वारा आई। मूसा ने तुम्हें बताया कि परमेश्वर कैसे चाहता है कि तुम अपना जीवन व्यतीत करो, और तुमने उस तर्क के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं किया। इसलिए व्यवस्था स्वयं मनुष्य पर दोष लगाने वाली है, न तो वो मुक्ति दिलाने वाली है और न उद्धार दिलाने वाली। व्यवस्था तुम्हें नहीं बचा सकती, वो तुम्हें धर्मी नहीं बना सकती। व्यवस्था तुम्हें बताती है कि परमेश्वर की कसौटी से आप कितने कम है। ये मत सोचना, यीशु ने कहा, कि मैं वहां पिता के सामने खड़ा होकर तुम पर दोष लगाऊंगा। जिस पर तुमने विश्वास किया वही तुम पर दोष लगाएगा, मूसा वही तुम पर दोष लगाएगा क्योंकि तुमने मूसा पर विश्वास किया। 46वीं आयत में आगे लिखा है, उसने कहा, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। इसलिए प्रथम 5 पुस्तकों में खोजो तो तुम्हें मिल जाएगा, जैसा कि यीशु ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। आप पवित्र शास्त्र की प्रथम 5 पुस्तकों को भली भांति पढ़ें और उन्हें अच्छी तरह से समझें, आप देखेंगे कि उनके विवरणों में मूसा यीशु के ही विषय में उन तमाम बलिदानों के प्रसंगों के माध्यम से बात कर रहा है। वह यीशु के विषय में बात कर रहा है जो संसार के मनुष्यों के लिए पाप बलि के रूप में चढ़ाया जाने वाला था। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे, क्योंकि वास्तव में मूसा मेरे ही वचनों की घोषणा कर रहा था। यीशु यहां पुराने नियम का लेखक होने का दावा कर रहा है।